ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ Hare Rama Hare Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Jai Jai Jagannath, Jai Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Gaura Hari Ba Re Ba Hari Ba Hari Ba Jaya Jaya Prabhupada 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 Radha Madhava Kunja Vihari
Radha Madhava Kunja Vihari
Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Radha, Giridhare Radha, Giridhare Radha. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Garanitai, 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 Jaya Garanitai. Nitai Gara Hariba, 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 Hariba. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudire Nascha Praesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtikim Humugyat Virandasya Gyananjana Shalakaya Chaksharun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bisham Stabitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Udabhata Kamalam, Shri Gurun Vaishnavamsya, Shri Rupam Sagrajatam, Sahagana Raghunathanvitam Tam Svajivam, Sadvaitam Savadutam, Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padan, Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamsya, Namo Vishnu Padaya, Krishna Prashchaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatta Deshatarine ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತೀತಿ ನಾಮಿನಿ ಶ್ರೀವಾರ್ಷಭಾನವೀ ದೇವಿ ದಯಿತಾಯ ಕೃಪಾಬ್ಧೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಜ್ಞಾನ ದಾಯಿನೇ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ಮಾಧುರ್ಯೋಜ್ಜಲ ಪ್ರೇಮಾಢ್ಯ ಶ್ರೀರೂಪಾನುಗಾ ಭಕ್ತಿದ ಗೌರ ಕರುಣಾಶಕ್ತಿ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಮಸ್ತೆ ಗೌರವಾಣಿ ಶ್ರೀಮೂರ್ತಯೇ ದೀನತಾರಿಣಿ ರೂಪಾನುಗಾ ವಿರುದ್ಧಾಪ ಸಿದ್ಧಾಂತದ್ವಾಂತಹಾರಿಣಿ ನಮೋ ಗೌರಕಿಶೋರಾಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈರಾಗ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ವಿಪ್ರಲಂಬಾರ ಸಾಂಬೋಧೆ ಪಾದಾಂಬುಜಾಯ ತೇ ನಮಃ ನಮೋ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಾಮಿನೇ ಗೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ ರೂಪಾನುಗಾವರಾಯತೆ ಗೌರಾವಿರ್ಭಾವ ಭೂಮೇಸ್ತಂ ನಿರ್ದೇಷ್ಟ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಸಾರ್ವಭೌಮಃ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಾಯತೇ ನಮಃ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರದ್ವಿಷಯ ನಮಃ ಪಂಚತತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಕ್ತರೂಪಸ್ವರೂಪಕಂ ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಶಕ್ತಿಕಂ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಜಯತಾಂ ಸರತೋರ್ಭಂಗೋರ್ ಮಾ ಮಂದ ಮತೇರ್ಗತಿ ಮತ್ಸರ್ವಸ್ವ ಪದಾಂಬೋಜೋ ರಾಧಾ ಮದನ ಮೋಹನೋ ದಿವ್ಯದೃಂದಾರಣ್ಯಕಲ್ಪದ್ರುಮಾದ ಶ್ರೀಮದ್ರತ್ನಾಗಾರ ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥೋ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಧಾ ಶ್ರೀಲ ಗೋವಿಂದ ದೇವೋ ಪ್ರಶ್ರಾಲಿವೇ ಸೇವ್ಯಮಾನೋ ಸ್ಮರಾಮಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಸರಸಾರಂಭಿ ವಂಶೀವಟ ತಟಸ್ಥಿತ ಕರ್ಷಂ ವೇಣೋ ಸ್ವನೇರ್ಗೋಪೀರ್ ಗೋಪಿನಾಥ ಶ್ರಿಯೇಸ್ತುನ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ ಹಮ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಾ ಪಹಲಾ ಸ್ಕಂದ ಕಾ ಪಹಲಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ ಭಾಗವತ್ ಕಿ ವಕ್ತಾವೋ ಕಾ ಲಕ್ಷಣೋ ಕೋ ಹಮ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೇ ಥೇ ಜೈಸೆ ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಾಯ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಋಷಿ ಶೌನಕ ಋಷಿಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಮೇ ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಕೋ ಸತ್ಕೃತಂ ಸೂತಮಾಸೀನಂ ಉನ್ಕೋ ಏಕ ಅಚ್ಛಾ ವ್ಯಾಸಾಸನ ಕರ್ ಬಿಠಾಯ ಪ್ರಪ್ರಚುರ್ ಇದಮ ಆದರಾತ್ ಬಹುತ್ ಆದರ್ ಕೆ ಸಾತ್ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಲ್ನೆ ಲಗೆ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ನೆ ಲಗೆ ತ್ವಯಾ ಕಲು ಪುರಾಣಾನಿ ಸ ಇತಿಹಾಸಾನಿ ಚಾನಕ ಆಖ್ಯಾತ್ಯಾನ್ಯದೀತಾನಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಾನ್ಯುತ ಆಪ್ ಸಾರೆ ಪುರಾಣ ಔರ್ ಇತಿಹಾಸ ಕೋ ಜಾನತೆ ಹೋ ಔರ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಮೇ ಅನಘಾ ಆಪ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಜರಾ ಸಾ ಭಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಹೀ ಹೈ ಕಲ್ ಹಮ್ನೆ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ ಭಾಗವತ್ ಕಿ ವಕ್ತಾ ಕಾ ಸಬ್ಸೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಹೋತಾ ಹೈ ವೋ ಪಾಪ ರಹಿತ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವಕ್ತಾ ಕಾ ವಾಣಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಉನ್ಕಿ ಚೇತನಾ ಕಾ ಪ್ರವಾಹ ಹೋತಾ ಹೈ ಯಾನಿ ಉನ್ಕೆ ಚೇತನಾ ಮೇ ಕಾಮ ಹೈ ಹಮಾರೇ ಅಂದರ್ ಭಿ ಕಾಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತಾ ಹೈ ಉನ್ಕಿ ಚೇತನಾ ಮೇ ಕ್ರೋಧ ಹೈ ಹಮಾರೇ ಅಂದರ್ ಭಿ ಕ್ರೋಧ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತಾ ಹೈ ಅಗರ್ ಉನ್ಕಿ ಚೇತನಾ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಹೈ ಹಮಾರೇ ಹೃದಯ ಮೇ ಭಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕಟ ಹೋತಾ ಹೈ ಇಸ್ಲೇ ವಕ್ತಾ ಕೋ ಅನಘಾ ಪಾಪ ರಹಿತ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ತ್ವಯಾ ಕಲು ಪುರಾಣಾನಿ ಚ ಇತಿಹಾಸಾನಿ ಚಾನಘ ಆಖ್ಯಾತ್ಯಾನ್ ಅಧೀತಾನಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಾನ್ಯುತ
आपने बहुत सारे आख्यान किए हैं, बहुत बार भागवत की चर्चा की है और बहुत जगह आपने इसको श्रवण किया है। आख्यान अधीतानि धर्मशास्त्राण्यन्युत, आप धर्मशास्त्रों को भी जानते हो और साथ साथ में यानि वेदविदां श्रेष्ठ भगवान बादरायण अन्ये च मुनय सुत परावर विदो विदुः। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है ये जानना क्या सही है और क्या गलत दोनों। व्यासदेव का जो सही सिद्धांत है वो जानते हो आप, और साथ साथ में अन्ये च मुनय सुता, अन्य मुनिगण कौन है, कल हमने उनका उल्लेखन किया था, न्याय के गौतम और वैशेषिक के कनाड और पतंजलि योग सूत्र के और कपिल नास्तिक कपिल सांख्य सिद्धांत के और जैमिनी वो पूर्व मीमांस यानी कर्म मीमांस सिद्धांत के, ये जो पांच प्रकार के अन्य मुनिगण हैं, अन्येच मुनय सूता परावर विरो विदुः, आप हर चीज जानते हुए सारा सिद्धांत जानते हो सही और गलत, और गलत सिद्धांतों के द्वारा यानी गलत सिद्धांतों की उपेक्षा में सही सिद्धांत को आप पेश करने में समर्थ हो, आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य है। ये देखिए ये व्यक्ति इस जगह इधर गलत है। सिद्धांत में दो प्रकार की चीज होता है, एक होता है स्वमत स्थापना, दूसरा है परमत खंडन। अगर कोई गलत है उसको गलत बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, वैसे गलत बोलने से उनके प्रति हमारा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन ये गलत कैसे हैं वो वर्णन करना अति आवश्यक होता है, इसलिए परमत खंडन कहा गया है। परमत खंडन का अर्थ है दूसरे गलत सिद्धांतों का खंडन करना, और साथ साथ में स्वमत स्थापना, हमारा मत क्या है, व्यासदेव का मत ही हमारा मत है, यानी व्यासदेव के द्वारा रचित वेदांत सूत्र ही हमारा मत है, यानी वेदांत सूत्रों को स्थापना करना और गलत सिद्धांत को खंडन करना, ये दोनों में आप निपुण हो। तो इसके बाद क्या कहा गया है, वेतत्वम सौम्य तत्सर्वम, आप बड़े नम्र हो, इतना महान ज्ञान होने के बाद भी आपके अंदर नम्रता है। वक्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है नम्रता, नम्रता के बिना कोई व्यक्ति भागवत का वक्ता नहीं बन सकता है। सुखदेव गोस्वामी और जितने भी भागवत वक्ता हुए बड़े नम्र हुए, वैसे ही सुत गोस्वामी पाद भी वो भागवत के वक्ता है, वेद तत्त्वम सौम्य और बहुत सरल हो आप, तत्सर्वम तत्तस्तद अनुग्रहात, आप हर चीज को जान चुके हो, क्यों, आपके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है। सुत गोस्वामी पाद के गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी का विशेष अनुग्रह है आपके ऊपर। इधर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जानना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी भागवत की वर्णन कर रहे थे लेकिन अनेकों लोग बैठे थे उनके सामने, उनमें से विशिष्ट रूप में सुखदेव गोस्वामी ने ये भागवत को परीक्षित महाराज को वर्णन किया, यानी केवल भागवत की सत्र में बैठना ही नहीं, बैठ के गुरु का कृपा का पात्र बनना आवश्यक है। औपचारिकता के लिए नहीं बैठना चाहिए, गुरु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए बैठना चाहिए। इसलिए इधर कहा गया है तत्वतस्तद अनुग्रहात् ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य, आप क्योंकि बहुत नम्र शिष्य हो, गुरवो गुह्यमप्युता, गुरु ने यानी आपके गुरु सुखदेव गोस्वामी ने आपके हृदय में कुछ गुह्य बातों को प्रकाशित किया है, भले ही सभा में हजार लोग बैठे थे वो गुह्य बातें केवल आपके हृदय में प्रकाशित हुआ है। इसलिए श्रोताओं में भी बहुत श्रेणियां होती हैं, कुछ श्रोताएं ऐसे बैठे रहते हैं देखने के लिए क्या चल रहा है, कुछ श्रोता होते हैं गुरु क्या बता रहे हैं, क्या सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं, व्यास देव इधर क्या बता रहे हैं, इस श्लोक का गुह्यतम रहस्य क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। कल हमने चर्चा किया था विचारण परो, विचारणीय विचारवान जो शिष्य होता है, विचारवान जो श्रोता होता है, वो भागवत की वास्तविक पात्र है। बाद में हमने चर्चा किया कि ऋषि मुनियों ऋषिगण ने 88,000 ऋषि नैमिषारण्य ऋषि में नैमिषारण्य में बैठ के, नैमिषारण्य जो भगवान का ही अवतार है, उधर सरस्वती नदी के तट की ओर बैठ के 6 प्रश्न पूछे। कल हमने पहला प्रश्न खाली उल्लेखन किया था, तत्र तत्रांजस आयुष्मान भवता यद्विनिश्चितम पुंसामेकांत श्रेयस तन्न संशितम अर्हसि। उनका प्रश्न क्या था, पुंसाम एकांत श्रेयस। कल हमने श्रेयस और प्रेयस ये दो शब्दों के बीच में अंतर कहा था। श्रेयस का अर्थ है जो हमारे लिए अच्छा है, प्रेयस का अर्थ है जो हमको अच्छा लगता है। हमारी ऐसी खोज रहती हमेशा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको स्वीकार करूंगा, या मुझे जो अच्छा लगता है वो स्वीकार करूंगी। सच में जो व्यक्ति जीवन में प्रगति करना चाहता है, सुखी होना चाहता है, उनको विचार करना चाहिए कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि हर वस्तु जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरी अच्छाई नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए श्रेयस और प्रेयस। तो नैमिषारण्य ऋषि ने कहा और पूछा, पहला प्रश्न पूछा सुत गोस्वामी पाद के, सारे जगत की लोगों के लिए एकमात्र चीज ऐसा क्या है जो सबके लिए श्रेयकर हो। देखिए, किसी को कोई चीज अच्छा लगता है, कोई किसी को कुछ और अच्छा लगता है, यानी प्रेयस जो है अलग अलग लोगों के अलग है। किसी को चाय पीना अच्छा लगता है, किसी को काफी पीना अच्छा लगता है, लेकिन दोनों प्रेयस है। आपको अच्छा लगता है लेकिन आपकी अच्छाई के लिए नहीं है, वो नशा है। किसी को पिक्चर देखना अच्छा लगता है, किसी को रेस्टोरेंट में जाके गप्पा मारना अच्छा लगता है। प्रेयस जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, सत्व रजस तमो गुणों के अनुसार अलग अलग प्रकार का स्वभाव है, उसके अनुसार प्रेयस भी अलग अलग है। लेकिन श्रेयस वो एक ही है, ऐसा नहीं आपके लिए कुछ और अच्छा है मेरे लिए कुछ और अच्छा है। क्योंकि सभी लोग जीवात्मा हैं, इसलिए श्रेयस एक ही है। यानी इस जगत में प्रत्येक वस्तु के लिए अच्छाई क्या है, एक ही वस्तु है। पुंसाम एकांत श्रेयस तन्न संशितुम अर्हसी। लेकिन वो किस प्रकार वर्णन कीजिए, हमको वर्णन कीजिए अंजसा। जब कोई चीज का वर्णन होता है उसको सबको समझ में आए उस प्रकार वर्णन करना चाहिए। ये वक्ता का योग्यता है, वक्ता का एक गुण होता है, सबसे जो जटिल चीज है उसको सरल बना के समझाना, इसको अंजसा कहा जाएगा। वैसे सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी पाद से नैमिषारण्य ऋषि प्रार्थना करते हैं, वैसे हम तो बैठे इधर ऋषिगण हैं, हे सुत गोस्वामी पाद, आपकी श्रोता केवल हम ही नहीं हैं, आगे आने वाले जितने भी कलयुग के जीवे वो सभी आपके श्रोतागण हैं। इसलिए जब आप पुंसाम एकांत श्रेय सभी जीवों को एकमात्र श्रेय चीज वर्णन करने जाओगे, तब ऐसा वर्णन करो ताकि वो बहुत सरल हो। हम तो मुनिगण हैं, हम समझ लेते हैं, लेकिन कलयुग के जीव मंदास मंद मतियों जिनका लक्षण हम आगे वर्णन करने वाले हैं वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सरल तरीके से बताइए। और तत्र तत्रांजस आयुष्मान आयुष्मान भवतः, आपका आयुष बहुत लंबा हो। क्योंकि उनको डर लगा कि हमारे पहले के गुरु थे यह व्यासपीठ में बैठे थे वो कौन थे? लोमहर्षण सूत। उनको तो बलराम ने वध कर दिया। हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि आपको बलराम ने स्वयं व्यासपीठ के ऊपर बिठाया। बलराम जी जो मूल गुरु तत्व हैं, उन्होंने आपके अंदर भागवत को संचारित किया, शक्ति संचार किया, फिर भी हम आशीर्वाद देते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है कि कभी भागवत के श्रोतागण वक्ता को आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन नैमिषारण्य के ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। क्यों दिया? क्योंकि नैमिषारण्य के ऋषि उम्र में बड़े थे और सुत गोस्वामी पाद इतने उम्र में बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी ज्ञान में वरिष्ठ थे। तो इनके अंदर वात्सल्य आया, भले ही गुरु हैं फिर भी शौनक ऋषि को वात्सल्य आया। सारे ऋषियों को वात्सल्य भाव से ने कहा, हंजसा आयुष्मान भवा, तत्तत्रांजसा आयुष्मान भवता यद्विनिश्चितम्। निश्चित रूप में कही है ये श्रेय शब्द। भगवद्गीता में भगवान भगवद्गीता में भी आता है, अर्जुन भी भगवान से यही शब्द पूछते हैं, यही प्रश्न पूछते हैं। उन्हें कहा कि कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यह श्रेयः, मेरे लिए श्रेयकर चीज क्या है वो बताइए करके अर्जुन ने कृष्ण से पूछा। अभी ये श्रेय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे बच्चों को नाम रहता है श्रेय, लेकिन अर्थ नहीं मालूम। अर्थ ये है जो हमारे लिए अच्छा है वो श्रेय है, जो हमको अच्छा लगता है वो प्रिय है। तो इसलिए श्रेयस ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में ये शब्द श्रेयस तीन जगह आया है, दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में, वापस तीसरे अध्याय में भगवान से अर्जुन ने वापस पूछा, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम यह श्रेयः। बाद में वापस पांचवें अध्याय में अर्जुन ने वापस पूछा, यह श्रेयः एकम वद निश्चित्वा, क्योंकि ये श्रेय वस्तु को समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए अर्जुन ने तीन बार पूछा ताकि वो खुद भी समझे और सभी लोग समझे। इसी प्रकार इधर नैमिषारण्य ऋषि पूछ रहे, तुम साम एकांत श्रेयस, समझाइए, विनिश्चितम तुम साम एकांत श्रेयस तन्ह संशितुम अर्हसी, संशितुम अर्हसी, जैसा जिस प्रकार हमारी योग्यता है उसके अनुसार हमको ये श्रेय चीज क्या है वो समझाइए। लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए कहिएगा? कलयुग के जीवों को ध्यान में रखते हुए कहिए। कलयुग का जीवों का स्वभाव क्या है? प्रायण अल्पायश सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदास मंद मतयो मंद भाग्या यह भद्रता। प्रायण मोस्टली यानी प्राय अल्पायुष सभ्य, कलयुग में सब लोगों की आयुष बहुत कम है, इसलिए आप ऐसा चीज को वर्णन कीजिए, ऐसा श्रेय विधि बताइए ताकि कम समय में भी लोग कम उम्र में ही या जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। प्रायण अल्पायुष सभ्या कलावस्मिन् युगे जना मंदाह, मंदाह का अर्थ है बहुत आलसी है। अगर आप ऐसा श्रेय विधि देंगे कलयुग के लोगों को जो बहुत कठिन है वो नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे तो आलसी है, खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आलसी है। अगर लोगों को बताएंगे मंदिर में आइए, मतलब बहुत दूर है प्रभु जी, क्या है हम लोग कितना इतना दूर कैसे आ सकते हैं, बाजू में है तो आ जाएंगे हम, कितना दूर है बस इधर से ऑटो पकड़ के जाना पड़ता है, बहुत दूर है, लेकिन कमाने के लिए चर्च गेट तक जाएंगे, बस ट्रेन में बैठ जाएंगे पहुंच जाएंगे चर्च गेट, बस जल्दी पहुंच जाते हैं। ये कलयुग के जीवों का स्वभाव है। भौतिक क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ कार्य करेंगे, भले कितना भी दुख मिले लेकिन फिर भी हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में महा आलसी। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी कठिन चीज बताएंगे तो मुश्किल होगा। बाद में मंदा सुमंद मते हो, आप ऐसा विधि बताइए जो बहुत सरल है, क्योंकि उनको कलयुग के जीवों का स्मरण शक्ति ज्यादा नहीं है, उनका बुद्धि भी बहुत कमजोर रहता है। इसलिए आप ऐसा विधि को वर्णन कीजिए जो कलयुग के जीव भी कर सकते हैं। मंदास मंद मते हो मंद भाग्या पद्रता, मंद भाग्या, मान लीजिए किसी का आयुष लंबा है, किसी का कोई बहुत एक्टिव है, आलसी नहीं है, स्मरण शक्ति और बुद्धि भी अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य यह है कि भक्तों का संगति प्राप्त नहीं होता है, संत का संगति प्राप्त नहीं होता है, शुद्ध भागवत का प्रवचन सुनने का मौका प्राप्त नहीं होता है, ये दुर्भाग्य है। मंदास मंद मतियो मंद भाग्या, वास्तविक भाग्य क्या है? भक्तों का दर्शन, भक्तों की संगति। मंद भाग्या उपद्रुतः, भले ही मान लीजिए भक्तों का संगति भी प्राप्त हुआ, उधर बैठ के चिंता करते रहेंगे, वो घर में क्या हुआ, वो हुआ, ये हुआ, पूरा मन जो है अनेकों अनेकों चिंताओं से युक्त रहता है। इसलिए उपद्रुतः, कल हमने इधर तक चर्चा किया, आगे के और पांच प्रश्न क्या है चर्चा करेंगे। अब ये पांच आगे छह प्रश्नों की श्रृंखला में पहला हमने चर्चा किया कि पुंसा में एकांत श्रेयस, अभी दूसरा प्रश्न क्या है देखेंगे। भूरेणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अद सद्युत्रत्सारम समुद्रत्यमनीषया भूरिभद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। क्या प्रश्न है देखिए, कितना सुंदर प्रश्न है, येनात्मा सुप्रसीदति। दूसरा प्रश्न ये है, हमको ऐसा विधि बताइए जिसके द्वारा, जो पालन करने के द्वारा आत्मा प्रसन्न हो, आत्मा प्रसन्न हो। इस जगत में हम अनेकों कार्य करते हैं जिसके द्वारा हमारा आंख प्रसन्न हो सकता है, हमारा इंद्रियां प्रसन्न हो सकता है, बुद्धि प्रसन्न हो सकता है, मन प्रसन्न हो सकता है, लेकिन आत्मा की प्रसन्नता के लिए हम कोई भी कार्य नहीं करते। आत्मा के स्तर के कितने कार्य करते हैं हम देखिए, सुबह उठते हैं या रात भर सोते, किसके लिए सोते हैं? वो सोना जो है आत्मा के लिए, शरीर के लिए, शरीर के लिए। उसके बाद नहा धोते हैं और शौच वगैरह क्रिया वगैरह करते हैं, वो किसके लिए है? शरीर के लिए। उसके बाद खाते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, वो किसके लिए है? वो भी शरीर के लिए। उसके बाद ऑफिस जाते हैं या काम धंधा करते हैं, वो भी किसके लिए है? शरीर के लिए। और शाम को वापस आते हैं तो परिवार लोगों के साथ बैठ के कुछ मनोरंजन करते हैं, वो किसके लिए है? वो भी शरीर और शरीर से उत्पन्न हुए लोगों के लिए है। और वापस सो जाते हैं, ये भी शरीर के लिए। लेकिन ये शरीर किसकी वजह से चल रहा है? ये आत्मा की वजह से चल रहा है, लेकिन इस आत्मा को जरा देखभाल ही नहीं करते। यही हमारा दुख का कारण है, हमको बहुत सारे समस्याएं हैं। कल भगवद गीता का क्लास में यही चर्चा किया था, हमारा दुख का कारण है कि हमारी आत्मा की प्रसन्नता के लिए जरा सा ही प्रयास नहीं कर रहे हैं। येनात्मा सुप्रसीदति, आत्मा कैसे प्रसन्न हो इसके बारे में हमको बताइए। कैसे बताइए? तत्र भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि भागश। शास्त्रों में अनेक अनेकों प्रकार के विधि विधान का वर्णन है, कहीं कुछ जगह ये कहा गया है, कहीं कुछ और कहा गया है, लेकिन हे सुत गोस्वामी पाद, सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाल के, सार निकाल के, भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागश, विभागश अनेकों अनेक विभाग है सुनने के लिए, अत सद्दु अत्र सारम, सारे शास्त्रों का सार निचोड़ निकालिए। सार निकाल के क्या कीजिए? हमको ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न हो। येनात्मा सुप्रसीदति, ये दूसरा प्रश्न है। अभी देखिए कितना बुद्धिमान बुद्धिमता वाला प्रश्न है। आगे चलते हैं। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। तीसरा प्रश्न। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः, भगवान श्री कृष्ण को सात्वतां पति कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान जो है सत्वान है। सत्वान का अर्थ है जिनके पास सत्य है, और भक्तों को सात्वताम कहा गया है। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो कृष्ण के जो चित शक्ति है वो चित शक्ति के द्वारा आवेशित हुए रहते हैं। जब तक जिसके हृदय में चित शक्ति का आवेश नहीं होता है, चित शक्ति का अर्थ है ज्ञान शक्ति भगवान का, तब तक हलादिनी शक्ति जागृत नहीं होता है, तब तक भक्ति जागृत नहीं होता है। तो सबसे पहला भगवान जो है भक्तों के हृदय में चित शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो चित्तवान है, सत्वान है। तो इसलिए भक्तों को सात्वताम कहा गया है। और कृष्ण जो है कौन है? भक्तों को रक्षा करने वाले हैं, वो सात्वताम पति है। अस्तित्व में प्रत्येक जीव का पति कृष्ण है। जब हम इस बात को भूल जाते हैं, किसी और को पति के रूप में मानते हैं, वास्तविक पति कृष्ण है। पति का अर्थ क्या है? जो हमको पालन करता है, जो हमको रक्षा करता है, वो पति है। तो कृष्ण ही वास्तविकताएं भक्तों की भक्ति को रक्षा करते हैं, इसलिए भक्त कृष्ण को ही पति मानते हैं। सात्वताम पति, उनका प्रश्न क्या है? देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान देवकी और वसुदेव के गर्भ में प्रकट होके उन्होंने क्या कार्य किया, या किस के लिए देवकी वसुदेव के गर्भ में प्रकट हुए, यानी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य के पीछे कारण क्या है, ये तीसरा प्रश्न है। पहला कौन सा प्रश्न है? पुंसाम एकांत श्रेयस। दूसरा, एमात्मा सुप्रसिद्धशी, आत्मा कैसे प्रसन्न हो। तीसरा प्रश्न क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पीछे रहस्य क्या है। आगे, तन्न शुश्रूषमाणानां हरसंगार वर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। ने कहा, पहले की आचार्यों के अनुसार आप भगवान के यस्यावतारो भूतानां अवतार कथा का वर्णन कीजिए। तो भगवान की अवतार कथा दो प्रकार है, वैसे छह प्रकार के अवतार है, लेकिन मूल रूप में दो प्रकार है। तो नवीशरण कृष्ण ने कहा सत गोस्वामी पाद को, हमको भगवान की जो कला अवतार है यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके बारे में बताइए। ये चौथा प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न है, भगवान की लीला अवतारों के बारे में कहिए। भगवान अनेकों अनेकों लीलाएं करते हैं, उन लीला अवतारों के बारे में हमको कहिए। ये उनका विशेष प्रश्न था। ये पांच प्रश्न हुए। और आखिरी में और एक प्रश्न पूछते हैं कि ब्रूहि योगेश्वर हे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठमदनोपेते धर्मः काम शरणं गता। ये छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या है? कृष्ण अपने स्वधाम में चले गए, जाने के बाद धर्म कृष्ण का शरण लिया, यानी इस कलयुग के लोगों को धर्म का मार्गदर्शन कौन करने वाला है। ये छह प्रश्न थे। मैंने कहा था कि ये छह प्रश्न का जवाब भी संक्षिप्त में करने का आज प्रयास करेंगे, लेकिन ये छह प्रश्न पूछने के अंतर्गत नैमिषारण्य के ऋषि सुत गोस्वामी पाद को कहते हैं, वयम तु न वृद्धप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। वो कहते हैं, आप ये जो छह प्रश्नों की जो कथा है या जवाब है, बहुत विस्तार से कहिएगा, ऐसा कहते जाइए ताकि उसका अंत ही ना हो, क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान के संबंधित विषय वस्तु भी अनंत है। आप ये मत समझिए कि हम भगवान के बारे में सुनते सुनते, कृष्ण के बारे में सुनते सुनते थक जाएंगे या हम संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं। वयम तु न वृतप्यामः, ये कृष्ण कथा का स्वभाव ही ऐसा है, जितना भी सुनो उतना सुनने का मन करता है, जितनी बार सुनो उतनी ही बार सुनने का मन करता है। इसलिए कृष्ण कथा के द्वारा हम तृप्त नहीं हैं और बार बार अनेकों बार उसको और विस्तार से हमको बताइए। हमारे पास केवल कृष्ण कथा के लिए समय है और किसी के लिए समय नहीं है। हम बहुत प्रयास किया है, यज्ञ करने का प्रयास किया, हजारों वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं, उसका फल क्या था? खाली हमारा शरीर काला हुआ, स्वाहा स्वाहा करते गए, लेकिन लोगों की कल्याण की क्या कहना, हमारा भी कल्याण नहीं हुआ। अभी हमको समझ में आ रहा है केवल भागवत ही हमारा कल्याण कर सकता है। इसलिए हम समय का पाबंदी से नहीं आए, समय का पाबंदी नहीं है, आपने शुरू किया उसका अंत नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं कि तन्न संदर्शितो धात्र दुस्तरम निस्थितीर्षिताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधाराय वार्णवम। त्वन्न संदर्शितो धात्र, आपका जो दर्शन हमको प्राप्त हुआ है ये बड़ा सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, सबसे महान भाग्य। चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहते हैं कि सबसे महान भाग्य क्या है, जब भक्त का संगति प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमते भाई कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद ए भाई भक्ति लता बीज। नैमिषारण्य कृष्ण कहते हैं तमन संदर्शितो धात्रा, आपका जो दर्शन हमको प्राप्त हुआ है बड़ा सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। कलिम सत्वहरम पुंसान, ये कली का स्वभाव है, लोगों की सत्व गुण को हर लेता है। कर्णधाराय वार्णवम, तो आप हमारे लिए एक योग कप्तान हो, हमने आपको गुरु के रूप में चुना है, आप हमारी जो आध्यात्मिक जीवन का जो नाव है आप उसके कप्तान हो। कर्णधाराय वार्णवम कलिमागतम अज्ञाया क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीन दीर्घ सत्रेण कथायाम शिक्षणो है। अरे आप ये समझिए, आसीन दीर्घ सत्रेण, हम लोग बहुत साल से अनेकों अनेकों सालों से केवल इसी क्षण का इंतजार कर रहे हैं। हमने अगर कोई पुण्य कार्य किया है ये समझते हैं उसका फल हमको प्राप्त हुआ है, आपका दर्शन से हमको ये फल प्राप्त हुआ है। आप हमको ये कृष्ण कथा कहिए। अभी देखिए हमने 6 प्रश्न नैमिषारण्य कृष्ण ने पूछा, ये 6 प्रश्नों का जवाब संक्षिप्त में दूसरे और तीसरे अध्याय में प्राप्त होता है। सुत गोस्वामी पर ये 6 प्रश्नों का जवाब या उत्तर देते हुए दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। कैसे प्रारंभ करते हैं? अपनी गुरु का स्तुति करके। कोई भी प्रवचन जब होता है भागवत का, मंगलाचरण होना आवश्यक है। मंगलाचरण के अंतर्गत वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार होता है, यानी जब तक हम गुरु को प्रणाम नहीं करेंगे तब तक हमको भागवत का प्रवचन शुरू करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भागवत की वक्ता है वो केवल अपनी गुरु का प्रतिनिधि मात्र है, वो अपनी गुरु का टेप रिकॉर्डर है, खुद का कोई योग्यता नहीं है करके समझता है। भले योग्यता है लेकिन उनका विचार क्या है, मेरा कोई योग्यता नहीं है, मेरी गुरु की आज्ञा से मैं भागवत कर रहा हूं। इसलिए जब तक गुरु का प्रणाम नहीं किया जाता तब तक आगे भागवत नहीं कर सकते। इसलिए इधर सुत गोस्वामी पाद अपने गुरु को 2 श्लोकों में स्तुति करते हैं। जब भी आप भागवत अगर कथा में जब भी बैठे होंगे कभी भी, ये दो श्लोक आपने जरूर सुना होगा। ये सुत गोस्वामी पाद का मंगलाचरण है सुखदेव गोस्वामी के प्रति। आपको ये बात मालूम होना चाहिए, जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुन रहे थे उस समय सुत गोस्वामी पाद उस भागवत के प्रवचन में बैठे थे। ये जो प्रवचन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में हुआ वो कहां हुआ था? सुप्ताल में हुआ था, हरिद्वार के नजदीक में है, मुजफ्फरनगर के नजदीक में सुप्ताल है जहां गंगा बहती है। लेकिन जैसे वो प्रवचन समाप्त हुआ उधर से सुत गोस्वामी पाद चलते चलते पहुंचे नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जो है सरस्वती नदी के तट पे है। सरस्वती अभी अदृश्य कलयुग में दिखाई नहीं पड़ता है, वो लखनऊ के पास है ये नैमिषारण्य। तो हमको ये बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा भागवत, परीक्षित महाराज के साथ में सुत गोस्वामी ने सुना, वही सुत गोस्वामी चलते चलते पहुंचे नैमिषारण्य ऋषि के पास। नैमिषारण्य ऋषि 6 प्रश्न पूछे सुत गोस्वामी को। सुत गोस्वामी अभी उन 6 प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। पहला क्या कर रहे हैं? मंगलाचरण करते हैं। सुत उवाच यम प्रवजन्त मनपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहावा उत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानथोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससोऽनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। ये दो श्लोक है मंगलाचरण के रूप में करते हैं। क्या कहते हैं? यम प्रवजन्त मनपेत मुपेत कृत्यम। अभी अपने गुरु का स्तुति करते हुए क्या कहते हैं? यम प्रवजन्तम, जिस व्यक्ति ने मेरे गुरु ने क्या किया सुखदेव गोस्वामी ने, प्रवजन्तम क्या करने लगे हा? वो जैसे जन्म लिए वो तुरंत भागने लगे। कल हमने इसका चर्चा किया था, सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रकट हुए अपनी माँ की गर्भ से, वो 14 साल के थे, 14 साल गर्भ में थे, वैसे बिल्कुल बिना देखे आगे पीछे देखे भागने लगे जंगल की ओर। उनको डर लगा कहीं माया मुझे पकड़ ना जाए। माया से डरना चाहिए, माया से कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे अपने शिष्यों से, मेरे शिष्यों में सारे अच्छे गुण हैं लेकिन यही मेरा चिंता है, वो माया से जितना डरना चाहिए उतना नहीं डर रहे। माया जो है इतना शक्तिशाली है, हम आप बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनियों को भी दिग्भ्रमित कर सकता है। इसलिए माया से डरना ये भक्त का लक्षण होता है। माया के जो प्रति डर है वो डर की वजह से भगवान के शरण में जाता है। इसलिए ये यम प्रवजंत मनपेत उपेत कृत्यम, आचार्यगण कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जन्मतः मुक्त आत्मा है, उनको क्या संस्कार की क्या आवश्यकता है? कोई संस्कार की जरूरत नहीं है। जनु संस्कार होता है यज्ञोपवेत, उसकी जरूरत नहीं है। अनपेत उपेत कृत्यम, जब सुखदेव गोस्वामी भाग रहे थे पीछे पीछे व्यास देव भागने लगे, हे सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी आ जाओ, पीछे आ जाओ, घर में आ जाओ बेटा। पुत्रेति पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस, हे पुत्र वापस आ जाओ। हर पिता तो पुत्र से आसक्ति रखता है, ये प्राय इस्कान में होता है। जब कोई लड़का भागवत गीता श्रवण करके उनके हृदय में वैराग्य आ गया तो इस्कान में ब्रह्मचारी बन जाता है, तो उनके माता पिता सब लोग भाग के आते हैं, हे पुत्र आ जाओ हमारे साथ घर में, हमें हमारे घर में आके भक्ति करो। क्या भक्ति क्या घर में नहीं हो सकता है क्या? स्टैंडर्ड डायलॉग्स है। जो भी आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए आता है वो घर से भाग के ही आता है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। इस भारत में जैसे कोई साधु संत देखते हैं लोग उनका चरण छूते हैं और बहुत आदर देते हैं, उनका गुणगान भी करते हैं। जब उनका पुत्र साधु बनने जाता है तो तुरंत उनको दुख लगता है। क्यों? आसक्ति। लेकिन व्यासदेव भी वैसे ही जा रहे थे, लेकिन व्यासदेव का जो विरह है, अपना पुत्र का विरह है, ये साधारण नहीं, वो दिव्य है। कैसे दिव्य है? व्यासदेव को मालूम था कि मेरा पुत्र सुखदेव गोस्वामी कौन है, साक्षात राधारानी का तोता। व्यासदेव को मालूम था मेरे पुत्र महान वैष्णव है। ये महान वैष्णव होने के नाते व्यासदेव वैष्णव विरह को अनुभव कर रहे हैं, पुत्र विरह नहीं है। व्यासदेव स्वयं भगवान है, सारे वेदों की रचयिता है, भागवत की रचयिता है, महाभारत की रचयिता है, क्या उनके अंदर कहां मोह होगा? ये पुत्र मोह नहीं व्यासदेव का, वैष्णव विरह है। वैष्णव विरह जो है वो आध्यात्मिक है। वैष्णव विरह जो है ये हमारी भक्ति के लिए प्रोत्साहन, भक्ति के लिए वो प्रोत्साहन का कारण बनता है। लेकिन अन्य प्रकार के लोगों के प्रति विरह है, मेरा वो चला गया, मेरा धन चला गया, मेरा पत्नी चली गई, मेरे बेटा चला गया, मेरा बहू चली गई, तो ये विरह जो है ये उचित नहीं है। कोई चला गया तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, कम से कम झंझट से तो छूटे, एक तो आसक्ति चला गया अपने जीवन में। लेकिन वैष्णव अपने जीवन से चले जाते, अपने घर से जाते हैं, तो विरह होना ही स्वभाव है। तो व्यासदेव का विरह क्या था? पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस, कानी पुत्रेति तन्मयता, तन्मयता से उन्होंने पुत्रेति पुत्रेति बोल रहे थे, लेकिन सारे इतने वृक्ष है वो वृक्ष प्रतिध्वनित कर रहे थे, यानी सुखदेव गोस्वामी के कान में ये कोई भौतिक जगत का मोह प्रवेश नहीं कर रहा था। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानथोस्मि, वैसे सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूं जो सबके हृदय में प्रवेश करके उनका हृदय को परिवर्तन करने का स्वभाव उनके पास है, उनका शक्ति सामर्थ्य उनके पास है। साधु वो है जो लोगों का हृदय को परिवर्तन कर सकता है, यानी उनकी वाणी में ऐसी सामर्थ्य होना चाहिए जिसके द्वारा वो वाणी कर्णों के द्वारा प्रवेश करके हृदय में जाके हृदय में कलमश को नाश करे। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए उस समय नशा करने वाले थे, गांजा पीने वाले थे, व्यभिचार करने वाले थे, वैसे हिप्पियों को भागवत सुनाए, लेकिन उनकी शुद्धता के कारण शुद्ध वाणी जैसे उनकी कर्णों से प्रवेश करके उनके हृदय में प्रवेश हुआ, उनके हृदय में सारे कलमश दूर हो गए। इसलिए यही बात कहा गया है, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान अथोस्मि, मैं ऐसे मुनि को प्रणाम करता हूं जो सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। यह स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम, जिसने सारे श्रुतियों को, सारे श्रुतियों का सार को स्वानुभव साक्षात्कार किए हुए हैं, आध्यात्म दीपमति तीर्षताम तमोंधम, ऐसे भागवत की वर्णन करने वाले सुखदेव गोस्वामी, या किए हैं जो सुखदेव गोस्वामी, आध्यात्म दीपम, सबके हृदय में आध्यात्म दीप को प्रकाशित करने वाले हैं। आध्यात्म दीपम अतितीर्षताम तमोंधम, सबके हृदय में जो तमस है, हृदय में अंधकार है, उसको दूर करने वाले हैं। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा भागवत को रचना किया ताकि संसारिणाम करुणया, संसारियों के प्रति करुणा के प्रेरित होते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भागवत की रचना की है। पुराण गुह्यम तम व्यास सूनि मुनिमान अथोस्मि, तम व्यास सूनु उपयामि गुरुम मुनि नाम, वैसे गुरु महामुनि सुखदेव गोस्वामी उनको मैं प्रणाम करता हूँ जो व्यासदेव के पुत्र हैं। तो ये दो श्लोकों में सुत गोस्वामी पास सुखदेव गोस्वामी को मंगलाचरण करते हैं या प्रणाम करते हैं, करने के बाद वो एक एक जो प्रश्न पूछे गए थे, छह प्रश्न, इन छह प्रश्नों का जवाब देते हैं। चलिए पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये था कि यह श्रेय पुंसाम एकांत श्रेयस, उसका जवाब देते हुए कहते हैं, मुनय साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो इनात्मा सुप्रसीदति। ने कहा कि यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति मुनय साधु पृष्टोहम। तो सुत गोस्वामी पाद ने पहला प्रश्न का जवाब देते उन्हें कहा कि आपने प्रश्न पूछा कि पुंसाम एकांत श्रेय, सभी लोगों को एकमात्र श्रेयकर चीज क्या है, उसका जवाब क्या है? सभी लोगों को एकमात्र श्रेयकर चीज है, इस प्रकार का प्रश्न ही श्रेयकर चीज है। क्यों? यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, कृष्ण के संबंधी जो प्रश्न होता है वो एकमात्र श्रेयकर चीज है। प्रश्न ही श्रेयकर चीज है तो जवाब की क्या कहना। तो पहला प्रश्न का जवाब बड़ा अद्भुत जवाब है, पहला प्रश्न का उत्तर ही है ये, आपका प्रश्न ही इतना अद्भुत है क्योंकि कृष्ण के संबंध में है, इसलिए वो कृष्ण के संबंधित प्रश्न ही एकमात्र कल्याणकारी है। जैसे हम लोग प्रश्न पूछते हैं हर रोज, एक एक क्रिकेट का स्कोर क्या हुआ, इसने क्या किया, उसने क्या किया, सारे जगत में केवल प्रश्नोत्तरी हो रहा है। जब दो कव्वे मिलते हैं एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, जो दो चींटियां मिलते हैं एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नोत्तरी चल रहा है इस जगत में, लेकिन वो प्रश्नोत्तरी जो कृष्ण के संबंध में हो वही एकमात्र श्रेयकर चीज है, बाकी सब जो है प्रेयस है। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, कृष्ण के संबंध में प्रश्न है तो ये प्रश्न ही आपका हितकर है, आपका श्रेयकर है। तो जवाब को बात की बात है, जवाब को साइड में रखिए, वो प्रश्न खाली प्रश्न पूछना ही, कृष्ण कौन है, कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण को कैसे जानूं, कृष्ण कितना सुंदर है, कृष्ण के विषय में अनंत प्रश्न हो सकते हैं। ये कृष्ण के विषय में प्रत्येक प्रश्न हमारा उद्धार का कारण बनता है। इसलिए नैमिषारण्य ऋषि ने कहा श्रेय क्या है, पुंसाम एकांत श्रेयस, इसका जवाब क्या दूं, उसके पहले ही आपने जवाब दे दिया है, वो प्रश्न में ही आपका जवाब है क्योंकि प्रश्न ही श्रेयकर है। आगे दूसरा प्रश्न क्या था, येन आत्मा सुप्रसीदति, आत्मा कैसे प्रसन्न होगी, उसका जवाब देते हुए एक श्लोक उच्चारण करते हैं। मैं निवेदन करूंगा जितने भी भागवत के भी श्रोता है इस श्लोक को याद कर ले, क्योंकि ये श्लोक अति महत्वपूर्ण श्लोक है। क्योंकि दूसरा प्रश्न क्या था, मेरी आत्मा कैसे प्रसन्न हो, आत्मा की प्रसन्नता कैसे है, उसकी जवाब या उत्तर देते हुए ये श्लोक उच्चारण किया गया है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आपने पूरा 7 दिन का भागवत सुन लिया, भले कुछ याद रहे ना रहे मुझे इतना दुख नहीं होगा, लेकिन पूरा 7 दिन का भागवत सुनने के बाद अगर ये श्लोक याद ना रहे मुझे जरूर दुख होगा, ये पूरा व्यवस्था का कोई प्रयोजन नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं ये श्लोक सभी याद करें, जब आज शाम को वापस जाएंगे घर में आप लोगों को सुना सकते हो इस श्लोक को, अपने पति बच्चे अन्य लोगों को पड़ोसों को सुना सकते हो, वो सोचेंगे अरे ये आप तो पंडित बन गए, आपने तो बहुत भागवत सुना था लेकिन एक भी श्लोक याद नहीं किया था, लेकिन अभी इस पे याद किया तो इस पे कम से कम इसे ये तो विशेषता होगी, ये तो खासियत होगी इस भागवत की, कम से कम एक श्लोक को याद करके तो गए पूरा 7 दिन में। चलिए इसको मेरे बाद उच्चारण करने के लिए प्रयास कीजिएगा। सवै पुंसान परो धर्मो, थोड़ा जोर से, सवै पुंसान परो धर्मो, सवै पुंसान परो धर्मो, यतो भक्तिरदोक्षजे, यतो भक्तिरदोक्षजे, यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुकीय प्रतिहता, अहेतुकीय प्रतिहता, ययात्मा सुप्रसीदति, ययात्मा सुप्रसीदति, ययात्मा सुप्रसीदति, समै पुंसान परो धर्मो, समै पुंसान परो धर्मो, समै पुंसान परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे, यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुक्यत् प्रतिहता, अहेतुक्य प्रतिहता, ययात्मा सुप्रसीदति, ययात्मा सुप्रसीदति, समै पुंसान परो धर्मो, समै पुंसान परो धर्मो, यतो भक्तिरदोक्षजे, यतो भक्तिरदोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुक्य प्रतिहता, ययात्मा सुप्रसीदति, ययात्मा सुप्रसीदति, समै पुंसान परो धर्मो, समै पुंसान परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे, यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुक्य प्रतिहता, ययात्मा सुप्रसीदति। ठीक है, कल आपको ये श्लोक और टेबल पे मिलेगा। अगर किसी को प्रिंट आउट चाहिए, कल हम इस श्लोक को रखेंगे टेबल के पास, आप उसको लेके और याद कर सकते हो। एक ही श्लोक छोटा सा कागज के टुकड़े में रहेगा, तो इसका अर्थ जानेंगे। ये कौन सा प्रश्न का जवाब है? दूसरा प्रश्न क्या है? वो आत्मा कैसी प्रसन्न हो, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो मैं कैसे प्रसन्न हूं, इस प्रश्न का जवाब है। हाउ कैन आई बिकम हैप्पी, सरल भाषा में, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता मैं सुखी हो जाऊं, मैं संतुष्ट हो जाऊं, मैं प्रसन्न हो जाऊं। तो ये प्रसन्न होने की, संतुष्ट होने की रहस्य कहा गया है। क्या है वो रहस्य? सवै पुंसान परो धर्मो, सारे लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं केवल गुजरातियों के लिए है, नहीं नहीं, ये खाली दक्षिण भारत के लोगों के लिए नहीं, ये खाली इस्कान वालों के लिए नहीं। सवै पुंसान, पुंसान का मनुष्य नहीं, सारे जीवों के लिए है। चाहे चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिवजी हो, चाहे दुर्गा हो, हर व्यक्ति के लिए, चाहे कोई भी देवता भी क्यों ना हो, सारे देवताओं का प्रसन्नता की यही रहस्य है। क्या है वो? सवै पुंसान परो धर्म, ये परो धर्म है। धर्म जो है, धर्म के बारे में हमने बहुत व्याख्या किया परसों। हमने कहा कि ये जो धर्म है, अपराधर्म है, दूसरा है परो धर्म है, आर्थिक धर्म है, परमार्थिक धर्म है। ये परमार्थिक धर्म है। क्या है वो परमार्थिक धर्म? सवै पुंसान परो धर्मो, ये तो भक्तिर अधोक्षजे। अभी ये धर्म शब्द कहा गया इधर, परो धर्म, परो धर्म। धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? धर्म का वास्तविक अर्थ है वो गुण या वो स्वभाव जिस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता, उसको धर्म कहा गया। पानी का धर्म क्या है? तरलता। अग्नि का धर्म है ताप और प्रकाश को प्रकाशित करना, यह अग्नि का धर्म है। ताप को और प्रकाश को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। वैसे प्रत्येक वस्तु का एक धर्म होता है। माइक्रोफोन का है धर्म क्या है? जो बोला गया है उसी बात को और ऊंची आवाज में लोगों को सुनाना, इसका धर्म है। अगर ये नहीं करता, ये कार्य नहीं करता, इसको माइक्रोफोन नहीं कहा जाता। वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव होता है, उस स्वभाव, वो गुण, वो स्वभाव जिसको उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता, वो गुण वो स्वभाव को धर्म कहा गया है। अभी आत्मा का धर्म क्या है? परो धर्म का अर्थ है आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म है भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज का भक्ति करना, ये आत्मा का धर्म है। तो ये तो भक्ति अधोक्षजे, लेकिन किस प्रकार का भक्ति है प्रभु? भक्ति भी अनेकों प्रकार होता है। वैसे बहुत शास्त्र के अनुसार अनेकों अनेकों प्रकार का भक्ति वर्णन है। सरल भाषा में बताऊं, एक प्रकार का भक्ति है नारियल भक्ति, बड़ा प्रसिद्ध है भारत में। नारियल भक्ति का अर्थ क्या है? गणेश जी के मंदिर में जाएंगे और एक नारियल फोड़ेंगे, यार गणेश जी को बोलेंगे मैंने आपको एक नारियल फोड़ा, मुझे एग्जाम में पास कर दो, मेरे व्यापार में बहुत तकलीफ है उसको निकाल दो। एक प्रकार का नारियल भक्ति है। दूसरे प्रकार का नारियल भक्ति है, क्या है वो? गणेश जी आप मुझे एग्जाम में पास करोगे, बाद में नारियल फोड़ूंगा। अभी इसमें भी बिजनेस है, पहले नारियल फोड़ दिया, बाद में कुछ हुआ नहीं तो। और एक प्रकार का है, गणेश जी मुझे एग्जाम में पास कीजिएगा, अगर पास हो जाऊंगा, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, मुझे प्रमोशन मिल जाए या नौकरी मिल जाए, मेरा शादी हो जाए, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इच्छा व्यक्त करते हैं, बोलते हैं कि अगर वो ये सब कर देंगे तो मैं आपके सामने एक नारियल फोड़ूंगा, नहीं तो आपके सर के ऊपर फोड़ूंगा। ऐसे भी होते हैं, किसको क्या मालूम। अनेकों को प्रकार के भौतिक कामनाओं से युक्त जीव है, लेकिन उस प्रकार की भक्ति का वर्णन नहीं हुआ है। किस प्रकार का भक्ति का है? किस प्रकार का भक्ति हमको संतुष्ट कर सकता है? ये आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए अधोक्षज का भक्ति करना होगा। लेकिन किस प्रकार का भक्ति? अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी का अर्थ क्या है? कोई हेतु के बिना। कोई हेतु के बिना कैसे कर सकते हम? कोई हेतु के बिना का अर्थ है केवल एकमात्र हेतु क्या है? अधोक्षज की प्रसन्नता की हेतु के अलावा और कोई हेतु के बिना जो किया गया भक्ति है वही आत्मा को प्रसन्न कर सकता है। भौतिक इच्छा के द्वारा किया गया भक्ति भी भगवान भागवत में कहा गया, ठीक है कर सकते हो, कम से कम करो, लेकिन वो आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता। केवल शुद्ध भक्ति जो कोई भौतिक हेतु के बिना किया जाता है, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के हेतु किया जाता है, अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि अभी तो कार्तिक है ना, कृष्ण का भजन करेंगे, श्रावण है शिव जी का, गणेश उत्सव आया गणेश जी का, समय के हिसाब के मौसम के हिसाब से अलग अलग लोगों की भक्ति, इसको अप्रतिहता भक्ति कहा गया, प्रतिहता भक्ति कहा गया है। जब दुख आया तो भगवान के पास गए, जब एकदम आनंद में है, अरे ये तो खून पसीना करके मेहनत करके कमाया है, मैंने कमाया है, और तकलीफ आया है, भगवान तकलीफ क्यों दिया? ये बद्ध जीव का स्वभाव है। जब सुख जे सुख में कोई स्मरण नहीं करता है भगवान का, जो दुख आता है तुरंत भगवान को डांटने लग जाते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया। एक छोटा सा कहानी है, एक राजा था, रोज जाके अपने महल के ऊपर से बहुत सारे वो वज्र, बहुत सारे गहने, बहुत सारा धन की वृष्टि कर रहा था। उधर के प्रजा आके तुरंत लेके भाग जाते थे, लेकिन उनका एक मिनिस्टर थे, उनका एक मंत्री ने पूछा राजा से, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा, मैं आपको एक शिक्षा देने के लिए कर रहा हूं। क्या वो शिक्षा? एक दिन राजा रोज इस प्रकार अनेकों अनेकों वज्र वैडूरी का बारिश कर रहे थे ऊपर से, एक दिन ऊपर से पत्थर फेंकना शुरू किया। और मंत्री ने कहा, आज ऐसा क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा, जरा देखो, सब प्रजा आई ये आशा करते हुए, फिर वापस मुझे धन मिलेगा, कुछ गहने मिलेंगे। उस दिन तो पत्थर ऊपर से बरसने लगा, तुरंत ऊपर देखने लगे, कौन है पत्थर फेंक रहा है? तो राजा ने कहा मंत्री को, देखो, जब ऊपर से वज्र वैढूर्य अनेकों अनेकों प्रकार के धन का बारिश हो रहा था, मैं गिरा रहा था, लोगों को दे रहा था, गलती से भी कोई पूछा नहीं मुझे ऊपर देख के कौन दे रहा है। जिस दिन पत्थर छोड़ने लगा, उस दिन सब पूछने लगे, अरे कौन दे रहा है पत्थर? क्यों? ये जीव का स्वभाव है। जब हमको भगवान हर हवा प्रदान करते हैं, हर प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, तब ये सब मैंने किया। और जैसे दुखाने लगे, हे भगवान, आपने मुझे दुख क्यों दिया? तो अहेतुकी अप्रतिहता भक्तिर अधोक्षजे, कैसे प्रसन्न हो जाए, हाउ टू बिकम हैप्पी, इसका जवाब इस श्लोक में है। क्या क्या है उसका जवाब? अधोक्षज की भक्ति किस प्रकार? अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। इधर ध्यान में रखिएगा, यह भक्ति शब्द केवल अधोक्षज को लागू होता है। अधोक्षज का अर्थ क्या है? अधा अक्ष झा। अधोक्षज का अर्थ है जो अपनी इंद्रियों के द्वारा जिनको हम नहीं जान सकते, यानी जो इंद्रियों से परे है, इनको अधोक्षज कहा जाता है। यानी कृष्ण, कृष्ण का नाम है अधोक्षज। इन भौतिक आंखों के द्वारा, इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को देख नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इधर अधोक्षज की भक्ति क्यों कहा गया, कृष्ण भक्ति क्यों नहीं कहा है, वासुदेव की भक्ति क्यों नहीं कहा है, गोविंद की भक्ति क्यों नहीं कहा है? अधोक्षज शब्द का अर्थ क्या है? अधोक्षज ही क्यों कहा गया इधर? क्योंकि ये बात स्पष्ट करने के लिए, भक्ति जो है वो इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। जिन इंद्रियों के द्वारा भगवान को जान नहीं सकते हो, जब उन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओगे, उन्हीं इंद्रियों के द्वारा भगवान को जान सकते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि भक्ति का परिभाषा क्या है। भक्ति का परिभाषा देते हुए श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्तिरुच्यते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकईश सेवनम। लोग सोचते भक्ति मतलब कोने में बैठना, कुछ ऐसा ध्यान करना, नहीं। ऋषिकेन यानी इस इंद्रियों के द्वारा, खास करके हमारी जिह्वा से प्रारंभ करते हुए हमारी आंख नाक कान हाथ पैर, इन सब को भगवान की सेवा के लिए चलाना चाहिए। ये भक्ति शब्द का परिभाषा आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे, अंग्रेजी में भक्ति मतलब डिवोशन। लेकिन प्रभुपाद जी जो इस संस्था के संस्थापक आचार्य है, भक्ति का परिभाषा, भक्ति का डेफिनेशन या उसका अर्थ डिवोशन नहीं कहते, वो क्या कहते हैं? डिवोशनल सर्विस, सेवा। लोग सोचते हैं भजन करते, ठीक है अभी एक जगह बैठे कुछ भजन करना, बैठे कोई सो गया, कहीं ध्यान किया, नहीं। भजन का अर्थ है भज धातु से भजन है, भज धातु का अर्थ है सेवा। सेवा कैसे होगा? इंद्रियों के द्वारा होगा। भक्ति जो है सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं। लोग सोचते हैं अरे ये तो भक्त बन गया, क्या उसको काम धंधा नहीं करना था, जाके भक्त बन गया। लेकिन जब कोई भक्त बनता है, देखिए वो सबसे ज्यादा सेवा करता है, सुबह 4:30 बजे से 10 बजे तक सेवा करता है। इधर एक बात याद आ रही है, वो मैं कहना चाहता हूं। एक बार मुझे प्रवचन के लिए बुलाया गया था बड़ा मैनेजमेंट कॉलेज में, बहुत बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है जहां सब लोग MBA वगैरह करते हैं। उधर मैंने प्रवचन दिया स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, यानी तनाव को कैसे संभाला जाए, नियंत्रण किया जाए। पूरा 2 घंटे का सेमिनार था। उसके बाद एक लड़का खड़ा हुआ और उल्टा सीधा बोलने लगा कि आप सब लोग क्या टाइम पास करते हो, आप सब लोगों का कोई और काम धंधा नहीं है, आओ समाज में आके काम करो, ऐसा बहुत सारे बोलने लगा। बाकी लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था, आप कौन होते हो हमको मैनेजमेंट सिखाने वाला, तो ऐसा ऐसा बोलने लगा। तो मैंने उनको एक प्रश्न पूछा, आपको मालूम है ऐसा कोई कंपनी जिसका पूरा विश्व में 500 केंद्र उस कंपनी का, और 10,000 लोग उस कंपनी में काम करते हैं, और 10,000 लोग काम करते हैं लेकिन महीने के अंत में एक भी व्यक्ति पगार नहीं लेता, और सब लोग वो कंपनी में जान लगा के काम करते हैं, जी जान लगा के काम करते हैं, अपना जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको एक मिनट का फुर्सत नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो पगार नहीं लेते, पगार मिलता नहीं और लेते भी नहीं है, और बड़े प्रसन्नता से रहते हैं। बताइए एक कंपनी बताइए जिसमें उसमें नौकरों का कंपनी पगार नहीं मिलता। तो चुप हो गया। मैंने कहा ऐसा एक कंपनी है, वो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसका 500 केंद्र है, 10,000 पूर्ण समर्पित फुल टाइम भक्त है, लाखों की संख्या में तो कांग्रीगेशन है, सब लोग काम करते हैं लेकिन कोई पगार नहीं मांगता। ये मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का अर्थ क्या है? कम पैसा दो ज्यादा काम लो, यही मैनेजमेंट है। अभी देखिए प्रभुपाद जी कितने बड़े मैनेजर है, वो लाखों कमाने वालों को उनकी कंपनी में दाखिला किया लेकिन एक पैसा भी नहीं देते। ये भक्ति का शक्ति है, ये मैनेजमेंट से भी बढ़कर है। बड़े बड़े मैनेजर भी पागल हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे भाई? आप देखिए आप कोई व्यापार करते होंगे, सेल्स यानी कोई चीज बेचना है, ये सेल्स मैनेजर को कितना पगार देते हो लेकिन फिर भी सेल नहीं कर पाता है, फिर भी पीछे पढ़ पढ़ के डांट के नाना प्रकार का दिमाग फोड़ के काम लेना पड़ता है लोगों से। आप सब लोगों ने देखा होगा जो कृष्ण के भक्त होते हैं, भले ही वो कितने ही बड़े पदवी में क्यों ना हो, खास करके दिसंबर के समय में हम किताबों का वितरण करते हैं, भगवद्गीता का वितरण करते हैं, उस समय सब लोग भगवद्गीता का सेल करते हैं, स्टेशन में खड़े होकर बड़े बड़े बक्सा उठाते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, लेकिन अंत में वो एक किताब बेचने का एक पैसा का कमीशन नहीं मांगते। ये क्या है? ये है सेवा, ये है भक्ति। भक्ति निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। तो भक्ति केवल, ये शब्द भक्ति जो है, ये भक्ति नामक शब्द है, वो केवल कृष्ण को ही लागू होता है और किसी को लागू नहीं होता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण का शुद्ध भक्ति करता है, वही उनका ही आत्मा, वही प्रसन्न हो सकता है, और कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। सुखी होने का यही एकमात्र रास्ता है। अभी दूसरा प्रश्न का जवाब नहीं दिया, अभी तीसरा प्रश्न क्या है वो देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न, क्या था, भगवान कृष्ण क्यों प्रकट हुए, इसका लंबा छोड़ा उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि आज इस सब्जेक्ट को खत्म करना है। भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में क्यों प्रकट हुए, उसका जवाब क्या है, कुंती महारानी अपनी स्तुतियों में कहती है, भवेस्मिन क्लिश्यमाणाया अविद्या कामकर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। हे भगवान, आप प्रकट होते हो, अनेक लीलाएं करते हो, करते क्या करते हो, आप लोगों को अपनी धाम में लेके जाने का प्रयास करते हो, इसलिए कहा गया है भावयत्येव सत्वेन लोकान्वयि लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यन् नरादिषु। लीलावतारानुरतो देवतिर्यन् नरादिषु, भगवान अनेकों अनेक लीलाएं करते हैं, लीला इतना अद्भुत लीलाएं करते हैं जिसके द्वारा लोगों की मन को आकृष्ट करते हैं, और जैसा हमारा कहां जहां भी हमारा मन जाता है हम भी उधर जाते हैं, स्वाभाविक तरीके से जहां हमारा मन है उधर हम जाते हैं। सबसे पहला भगवान अपनी लीलाओं को करके हमारे मन को हर लेते हैं, स्वाभाविक है, हर व्यक्ति कुछ एडवेंचर सुनना चाहता है, पिक्चर में आके एडवेंचर आते हैं, फाइटिंग किया, उसको मारा, ये मारा, सब लोग देखते हैं, भगवान ऐसे सुंदर एडवेंचर करते हैं, ऐसे लीलाएं करते हैं, सबका मन को आकर्षित कर देते हैं, इसलिए कहा गया है ब्रह्म संहिता में, लीला इतेन भुवनानि जयत्य जस्त्रम, हमारा मन जो है माया के द्वारा जय किया गया है, माया के वशीभूत हो गए हम लोग, भगवान की लीलाओं को जैसे श्रवण करेंगे कृष्ण जो है हमारे मन को जय कर लेते हैं, हमारे मन को आकर्षित कर लेते हैं, इसे भगवान का नाम है मनोहर। हमारे मन माया के द्वारा हरण किया गया है, और वही मन जो है कृष्ण हमारा मन को हर लेते हैं, जैसे मन को हर लिया हमको भगवान की धाम में लेके जाते हैं। यानी कृष्ण इस जगत में प्राकट होने का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमको भगवान की उनकी धाम में वापस लेके जाना, उनका एकमात्र उद्देश्य। बाद में हमने चर्चा किया कि भगवान के चौथा प्रश्न है, भगवान की कला अवतार यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश एक कौन है, इनके बारे में भी सुनना था उनको, इनको कला अवतार कहा जाता है, भगवान के अंश जो है उनके अवतार हैं, और अंश के अंश है कला है, कला का अर्थ क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं, लेकिन वो गौण सृष्टि करता, विष्णु सबसे पहला ये जगत की सृष्टि के लिए सारे सामग्रियों का सृष्टि करते हैं, और इन सामग्रियों को इस्तेमाल करके ब्रह्मा जी अपना सृष्टि करते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी जो है वो गौण सृष्टि करता है। जैसे ये जो शर्ट कोई बनाता है, टेलर शर्ट को बनाता है, दर्जी जो है शर्ट को बनाता है, लेकिन कपड़ा कौन बनाता है, बुनकर बनाता है, वीवर बनाता है, कपड़ा यानी इस जगत की निर्माण के लिए जो सामग्री है उसका निर्माण वास्तविकता विष्णु करते हैं, और उन सामग्रियों को लेके ब्रह्मा जी निर्माण करते, इसलिए ब्रह्मा जी गौण सृष्टिकर्ता है, मुख्य सृष्टिकर्ता विष्णु है। और शिव जी कौन है, कोई और नहीं है, वो संहार करने वाले हैं, यानी तमोगुण के नियंता है, तमोगुण को नियंत्रण करने वाले हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण को नियंत्रण करने वाले हैं, और विष्णु कृष्ण के जो अवतार है, पुरुष अवतार के रूप में गिना जाता है, वो कौन है, ये स्थिति करने वाले हैं। इनके बारे में अवतार के चर्चा थोड़ा सा विस्तार से हम कल करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन गुणावतार माने जाते हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा संक्षिप्त में ये दूसरे अध्याय में हुआ है। बाद में और एक प्रश्न था, हमको लीलावतार के बारे में सुनना है, तो लीलावतार क्या है, लीलावतार के बारे में तीसरे अध्याय में वर्णन हुआ है। तीसरे अध्याय में सुत गोस्वामी पाद नैमिषारण्य ऋषियों को एक 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 अवतार का वर्णन करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा चार कुमार प्रकट हुए, दूसरा तीसरा, ऐसा कह के उन्होंने कहा कि भगवान के अवतार तो अनंत है। अवताराय संकेय हरे सत्व निधि द्विजा एता विदासिन कुल्या सरससु सहस्रशः। क्योंकि भगवान अनंत होने के नाते उनके अवतार भी अनंत है। इसके बाद सुत गोस्वामी पाद कहते हैं, जब मैंने इन अवतारों की गणना करना शुरू किया या अवतारों की गणना किया, दो गलतियां की, गणना कर ही नहीं सकते, अगर अनंत है तो क्या गणना करेंगे, अवतार असंख्य है, एक गलती मैंने ये किया। दूसरा गलती क्या किया मैंने, सुत गोस्वामी पाद स्वयं कहते हैं कि मैंने इन अवतारों की लिस्ट में कृष्ण का नाम डाल दिया। ध्यान दीजिए, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक श्रीमद् भागवत का मूल श्लोक या भागवत का सारे श्लोक जिस श्लोक के ऊपर आधारित है उस श्लोक को उच्चारण करते हैं, जिसको परिभाष सूत्र कहा जाता है भागवत का। क्या है वो, एते चम सकल पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियार्व्याकुलम लोकम मृदन्ति युगे युगे। इंद्रियार्व्याकुलम लोकम, जब इंद्र के दुश्मन इस संसार में बहुत सारा उत्पात मचाते हैं, तब इंद्र के दुश्मनों को मारने के लिए, उनको वध करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये बात हमको जानना चाहिए। ये हम लोग सुनते हैं दस अवतार है, ये दस अवतारों का लिस्ट में कृष्ण का नाम नहीं है। जिस जगह दस अवतारों की लिस्ट में कृष्ण का नाम है वो गलत है। अवतारों का जो मुख्य दस अवतारों का लिस्ट इस प्रकार है, मत्स्य कूर्म वरह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि। बलराम अवतार है, कृष्ण जो है वो सारे दस अवतारों के सारे अवतारों के स्रोत है। हम लोग सोचते विष्णु कभी राम के रूप में आते फिर वापस विष्णु बन जाते हैं, विष्णु कभी मत्स्य के रूप में आते वापस विष्णु बन जाते हैं, वो गलत है, क्योंकि भागवत उसका प्रमाण है। सुत गोस्वामी स्वयं कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण साक्षात भगवान है, बाकी सब अवतार है। क्योंकि इन अवतारों की लिस्ट में कृष्ण का नाम डाला है, लेकिन इन अवतारों की लिस्ट में कृष्ण का नाम निकाल दीजिए और क्या कीजिए, कृष्ण को अवतारी कहिए। इसलिए जयदेव गोस्वामी कहते हैं केशवद्रीता नरहरि रूपा, केशवद्रीता राम शरीरा, केशवद्रीता भृगुपति रूपा, केशवद्रीता कूर्म शरीरा, केशवद्रीता दशविध रूपा। दशविध रूप में कौन आए, केशव आए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अवतार की वर्णन करने के बाद अंत में आखिरी प्रश्न था कि कृष्ण अपने धाम में गए, धाम में जाने के बाद सारे जगत को उद्धार करने के लिए क्या रास्ता है, कलयुग के लोगों को मार्गदर्शन कौन करेगा, कलयुग के लोगों को धर्म का रास्ता कौन बताएगा। उसके प्रसंग में सुत गोस्वामी पाद कहते हैं आखिरी प्रश्न का जवाब देते हुए, यही प्रश्न था, कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादिभि सह कलो नश्च त्रिशामेश पुराणार्कोदनोदिता। जैसे कृष्ण अपने धाम में चले गए, कैसे गए, धर्म ज्ञानादिभि सह, धर्म और ज्ञान को लेके चले गए, यानी कलयुग में धर्म और ज्ञान नहीं रहेगा, पूरा अंधकार छाया रहेगा। जैसे कृष्ण अपने धाम में गए पुराणार्कोदनोदितः, अर्क, अर्क का अर्थ है सूर्य, ये भागवत पुराण जो है सूर्य के समान है, और ये भागवत पुराण कृष्ण का अस्त होते ही भागवत पुराण का उदय हुआ। यानी भले ही कृष्ण अपने धाम में धर्म धर्म और ज्ञान को लेके चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि भागवत है ना, भागवत है। अगर कोई कहे अगर कृष्ण के समय अगर मेरा जन्म हुआ होता तो कितना अच्छा था, मेरा उद्धार हो जाता, नहीं, कृष्ण है। एक कृष्ण का अस्त हुआ द्वापर युग के अंत में, उसी समय और एक कृष्ण का उदय हुआ, वो है भागवत। एक सूर्य का अस्त हुआ तो दूसरा सूर्य जो भागवत नामक सूर्य का उदय हुआ, इसलिए कहा गया है कृष्ण सुदामो भगते। कृष्ण जैसे अपने धाम में गए, धर्म ज्ञान आदि विषय धर्म और ज्ञान को लेके गए, तो यही भागवत सूर्यो भाती उदय हुआ। पुराण और कोदुनो दिता, तो इस प्रकार ये भागवत की महिमा, ये उसकी पराकाष्ठा है। यानी ये भागवत जो है कृष्ण स्वरूप है। कृष्ण लीलाओं में जो सौभाग्य जिन भक्तों को मिला कृष्ण लीलाओं में भाग लेने की, वही सौभाग्य हमको भी प्राप्त हो सकता है अगर भागवत का श्रवण करेंगे तो। हमको कोई दुख का या अरे कृष्ण के समय अगर मेरा जन्म हुआ था कृष्ण लीला में भाग लेता, कोई जरूरत नहीं। आचार्यों कहना है जो व्यक्ति जितना श्रद्धा के साथ भागवत का श्रवण करता है उतना हद तक कृष्ण की लीला में भाग ले रहा है, ये सिद्धांत है। जो सौभाग्य यशोदा को प्राप्त हुआ कृष्ण को खिलाने की, वही सौभाग्य आपको विग्रह के रूप में भगवान खड़े हैं उनको खिलाने से प्राप्त होता है। जो सौभाग्य अन्य गोपियों को प्राप्त हुआ कृष्ण की लीलाओं में आनंद लेने की, वही सौभाग्य हमको प्राप्त हो सकता है अगर भागवत को श्रद्धा से श्रवण करेंगे तो। जैसे ये बात उन्होंने वर्णन किया सुत गोस्वामी पाद आगे इन भागवत की महिमा को वर्णन करते हैं स्वस्ति अयन महत इत्यादि श्लोकों से। कल इन श्लोकों को लेंगे, और बाद में जब उन्होंने कहा ये जो भागवत है मैंने सुना, कहां से सुना? सुखदेव गोस्वामी से सुना। और ये भागवत को व्यासदेव ने रचना किया, तब प्रसंग आता है नारद व्यास संवाद, जिसके अंदर नारद मुनि का जो प्रवचन है अति अद्भुत प्रवचन है, बहुत कठोर प्रवचन है, बहुत शुद्ध प्रवचन है। कल हम नारद व्यास संवाद में खास करके नारद मुनि के द्वारा उच्चारित श्लोक है भागवत के संबंध में, भागवत की शुद्धता के संबंध में हम उसको चर्चा करेंगे। कल बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, नारद मुनि स्वयं इन श्लोकों को उच्चारण करते व्यासदेव को। नारद जी के व्यासदेव के गुरु है नारद जी। कल नारद व्यास का संवाद लेंगे। वैसे तो आज उसका सब्जेक्ट था लेकिन हो नहीं पाया, तो आज का जो विषय है वो हम कल लेंगे। क्या है वो? नारद व्यास संवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की शील प्रभुपाद की जय। मेरा निवेदन है कल आप समय पे आए 6 बजे, क्योंकि हमको बहुत लंबा चर्चा करना है। हरे कृष्ण। अरे बच्चों का कार्यक्रम होगा।